اور فرمایا وقل اور کہہ دیجئے اے نبی آپ یہ دعا کرا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کے ہم سب کو بھی ایک دعا سکھا دی گئی اے نبی آپ دعا کریں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطان نصیرہ اے میرے رب مجھے داخل کرنا صدق کے ساتھ مجھے نکال صدق کے ساتھ اور اے اللہ میرے لیے اپنے پاس سے ایک قوت عطا فرما. اب یہ بہت ہی زبردست دعا ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے. وظیفہ جاننے کا شوق ہوتا ہے نا ہمیں, تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اب یہاں پہ کانٹیکسٹ کے اندر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہجرت کریں, تو ہجرت کریں تو اب یعنی اے اللہ بابرکت جگہ میں داخل کرنا, صدق کے ساتھ داخل کرنا یعنی مدینہ کے اندر, اور بابرکت جگہ سے نکالنا سچائی کے ساتھ نکالنا یعنی مکہ سے, تو میرا ایگزٹ اور انٹری میری دونوں باعزت ہوں. تو بعض نے لکھا ہے کہ مدخل صدق مکہ ہے اور مخرج صدق مدینہ ہے, اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ آج تو آپ جائیں گے لیکن آپ واپس آئیں گے, اور آپ مدینہ سے نکلیں گے بھی عزت کے ساتھ کہ جب پورا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور مکہ میں جو داخل ہوئے تو صدق کے ساتھ فاتح بن کے داخل ہوئے. تو بعض مفسرین نے لکھا اس میں پیشین گوئی ہے کہ آپ جائیں گے بھی وہاں سے مدینہ سے جائیں گے بھی صدق کے ساتھ اور اس شہر میں داخل ہوں گے بھی صدق کے ساتھ آنریبلی, یعنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر نا بہت ساری تفسیریں ہیں کہ مدخل کیا ہے اور مخرج کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک نہیں ہے صرف, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک چیز ہو گئی, لیکن عام بھی اس کا معنی جتنے لوگ دعائیں کریں گے یہ دعا مانگیں گے تو جتنے بھی مدخل صدق اور مخرج صدق ہیں سارے اس میں معنی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ایک تفسیر میں کہ مدخل صدق جو مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ قبر ہے کہ مجھے آنر کے ساتھ قبر میں داخل کرنا اور یہ دنیا سے بھی میرا اخراج نہ, یہاں سے بھی میرا نکلنا, میرا ایگزٹ یہاں سے یا اللہ عزت کے ساتھ کرنا. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ زمین کے اوپر بھی ہمیں عزت کے ساتھ رکھنا ہے, اللہ زمین کے نیچے بھی عزت سے لے کے جانا, تو وہ یہی بات ہے, ٹھیک ہے, یہی بات ہے. اور پھر اللہ اگر قبر میں ہمارے لیے کوئی سلطان النصیرہ کر دے, کوئی ہمارا مددگار قوت والا کر دے تو اور کیا چاہیے. اور ایک تفسیر میں یہ کہ داخلہ کہاں کا, جنت کا سلامتی کے ساتھ. صدق کا مطلب مینز یہی, صدق کا مطلب ہے سلامتی, صدق کا مطلب ہے کہ آنر, صدق کا عزت یعنی آنر عزت, صدق کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنیسٹلی, صدق کا مطلب مطلب اچھی ریپوٹیشن, اچھی طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں اچھی طرح سے, یعنی بہت سارے معنی صدق کے بھی جس میں ساری بھلائی اچھائی اس کے معنی آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نکلوں بھی اور میں داخل بھی ہوں صدق کے ساتھ, تو اس مفہوم میں بڑی وسعت ہے, بڑی وسعت ہے. تو دنیا سے نکلنا اور آخرت میں داخل ہونا بھی ہے, جنت میں داخل ہونا اور دنیا سے نکلنا بھی ہے, یہاں سے منتقلی بھی ہے کہ جنت میں میں سلامتی کے پہنچ جاؤں, حشر کے اندر بڑی سختیاں ہیں تو اللہ وہاں تک سلامتی سے, یہاں سے بھی سلامتی سے ہی جاؤں. اللہ اکبر. تو عام جو اس کا معنی جب آپ لیتے ہیں نا تو اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں, سارے ہی امور آ جاتے ہیں. جہاں سے بھی انسان داخل ہو اور جہاں پہ بھی انسان انٹر ہو وہ سب اس کے اندر, اس کے معنی کے اندر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے جو آپ کو خاص خاص تفسیروں کے بھی بتا دی اور عام میں سب ہی کچھ آ گیا, تو یعنی عام میں پھر آپ کیا مانا لیں گے کہ میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں, چاہے وہ کسی بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں یا آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں, آپ اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں, آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں, کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, किसी चीज में भी, आप अपने ऑफिस जाती हैं, इवन ये कि आप अपनी क्लास में दाखिल हो रही है ना, चाहे चाहे हमारी वर्चुअली क्लास है, हमारी फिजिकल नहीं भी है, फिजिकली भी जो उसके लिए आप कर सकते हैं, वर्चुअली के लिए भी, या जो भी नेकी का काम आप करने के लिए जा रहे हैं, या कोई भी अपनी जरूरत के लिए आप जा रहे हैं, दीन के काम के लिए निकल रहे हैं, सब में आप ये दुआ कर सकते हैं, हर जगह पे मुझे अल्लाह इज्जत के साथ, सलामती के साथ, खैर के साथ, ऑनेस्टी के साथ, मतलब ऐसे लेकर जाना कि मिसलन आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो आप ये दुआ करके जाते हैं, तो आपकी अल्लाह ताला वहां पे भी आपका बैठना आपके सब सच्चाई के साथ हो, ऑनर के साथ हो, आप सीधे चलने वाले हो, ये मतलब सारा माना इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें बड़ी जामियत है। अब इसमें हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो जब अपने नबी को अल्लाह ताला ने इस दुआ को सिखा दिया, आप ये सोचें कि हमारे लिए ये दुआ कितनी फिर कारामद है। आप इवन मैंने जैसे आपको बताया ना कि नेकी के लिए भी जाना, आप किसी मस्जिद जा रहे हैं, आप कोई दर्स देने के लिए जा रही हैं, ये पढ़े, ठीक है, अपने घर के अंदर ही इंसान दाखिल हो रहा है ना, तो अल्लाह ताला यहाँ पे मुझे अच्छे तरीके के सकना, ये ना हो कि मैं यहाँ पे जाके घर के अंदर जाके कोई बुराइयां शुरू कर दूं, कोई गलत काम शुरू कर दूं, टाइम वेस्टिंग शुरू कर दूं, मुझे सिद्क के साथ मेरे घर में भी रखना, बाहर निकल रही है तो मैं बाहर भी निकलूं तो सिद्क के साथ ही निकलूं। सुभान अल्लाह, कितनी जबरदस्त बात है ना, अल्लाह हू अकबर। तो हम लिख लें, जहां जब हम जो भी आप अपने अपने नोट्स हैं जहां पे भी बनाती हैं तो वहां पे लिख लें शुरू के अंदर, ताकि जब क्लास में एंटर होने लगे तो इंशाल्लाह आप ये दुआ पढ़ के एंटर हो। शानदार दुआ है ना, पूरी जिंदगी के लिए मुफीद है हमारे लिए। तो और कब्र का तो, और इसके लिए तो हमें हमेशा ही बहुत ही ज्यादा जरूरत इसकी है। और फिर वजाली मिल्लतुन का सुल्तान नसीर है, अल्लाह अपने पास से अल्लाह ताला मुझे एक मददगार कुव्वत दे दे, एक ऐसी कुव्वत जो मेरी साथ खड़ी हो जाए, मेरी सपोर्ट में खड़ी हो जाए, मेरी हेल्प में खड़ी हो जाए। और इंसान की चाहे दीन के काम है चाहे दुनिया के काम है, हर कामों के अंदर इंसान को किसी कुव्वत की जरूरत होती है ना, मदद की जरूरत होती है, चाहे वसाइल है, वसाइल की जरूरत होती है, असबाब की जरूरत होती है। तो ये एक ताकत है ना, किसी भी सिचुएशन में फायदा आपने उठाना है, कोई ताकत चाहिए ना आपको, कुव्वत चाहिए, तो अल्लाह अपनी पास एक ताकतवर कुव्वत मेरे साथ लगा दे, सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए तो फिर और क्या चाहिए, इसका मतलब अपनी ताकत कुव्वत पे इंसान को मान नहीं होना चाहिए कि मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे नहीं किसी की जरूरत, नहीं, अपने अंदर ताकत कुव्वत हो भी, चाहे आप जहनी है इल्मी है आपके अंदर, आपके पास बड़ा नॉलेज है, तब भी आप यही कहें कि अल्लाह मुझे तेरे तरफ से ताकत मददगार चाहिए, एक कुव्वत मददगार चाहिए, जब भी मैं कहीं दर्श देने जा रही थी। तो ये सच्ची बात है, ऐसी ये नहीं कि मैं कोई खुद से बना के कर रही थी, मैं यही कहती हूँ अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, अल्लाह तूने ही मेरे से बुलवाना भी है, तूने ही मदद करनी है, वो मेरे अंदर कहाँ ताकत है ना बोलने की ना कुछ, जहन माउफ हो जाए कुछ पता ही नहीं है, अल्लाह तूने ही मेरे से बुलाना, मुझे कुछ भी नहीं आता, इवन ये क्लास में बैठने से पहले आप लोगों को हर फ्राइडे को मैं यही कहती हूँ अल्लाह मुझे नहीं कुछ आता, तूने ही मुझे पढ़ाना है, तूने मुझसे बुलवाना है, तूने मेरे से ये काम करवाना, कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह की किताब को हमने अभी पढ़ लिया ना, कि जरा भी अगर ट्विस्ट कर दिया, जरा भी इसको अपनी तरफ से कुछ का कुछ बना दिया तो बहुत बड़ा इसका वबाल है, तो ये इसके लिए अल्लाह ही की मदद चाहिए। तो चाहे नेकी का काम है, चाहे आपकी कोई जरूरत का काम है, चाहे कोई, तो हर जगह पे अल्लाह ताला की मदद चाहिए हमें, जहनी काम है जिस्मानी काम है सब में अल्लाह की मदद चाहिए। तो कोई काम शुरू करने लगे आप उसमें भी ये पढ़े, और बच्चियां अपने घरों की होने लगी हैं, नए घर में जाने वाली हैं, उनकी शादी होने लगी है, बच्चे हैं बच्चियां हैं, इस रिलेशनशिप में दाखिल होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला हमें यहां से, मेरे घर से भी मैं सिद्क के साथ ही निकलूं, नए घर में भी मैं सिद्क के साथ ही जाऊं, और वहां पे भी मुझे अपनी तरफ से मदद कर देना। और फिर इंसान अगर दीन का काम कर रहा है तो ये जाहिर है कुव्वत ताकत चाहिए उसके लिए। तो सारी जिंदगी की कमियों को ये दूर करने के लिए काफी है दुआ। अगर इंसान को सोच समझ के पढ़े ना, तो रोजमर्रा के हमारे कामों में एक ये हमारे सारे कामों के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है। तो जब हमें कुव्वत मिल जाएगी, कुव्वत, गलबा, मदद, हकूमत, मैंने कहा जैसे आपको ताकत, ये सारा सुल्तान का मतलब बहुत बड़ा है, दलील, यहाँ पे जो चीज चाहिए जोर, तो यानी अगर दीन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए भी कुव्वत चाहिए, अगर दीन का कोई काम करना है उसके लिए भी आपको और भी मददगार चाहिए, ऐसे बाजू चाहिए जो काम करें आपके साथ मिलके, तो आप मांग लेते हैं अल्लाह से मददगार। ठीक है, वकुल, और कह दीजिए नबी, जा अल हक वजहक अल बातिल, आ गया हक और जायल हो गया बातिल, बातिल मिट गया, इन अल बातिला क्या ना जहूका, बेशक बातिल तो मिटने वाला ही है। और जब आप ये दुआ करेंगे तो उसके बाद अल्लाह की मदद आ गई, तो फिर हर कुव्वत जो बातिल की है वो खत्म हो जाने वाली, क्योंकि बातिल को खत्म ही होना है, बातिल ठहर नहीं सकता और हक उन्हें गालिब आना ही। ये आयत या तो उस वक्त नाजिल हुई जब आप फतेह मक्का के मौके पर बैतुल्ला में दाखिल हुए थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबतुल्ला में गए हैं, तो वहां पर जो बुत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों को गिराते जाते थे और ये आयत पढ़ते जाते थे। तो इस आयत के अंदर क्या है कि जरब लगाते थे और गिराते थे उनको, और ये आयत कहते थे हर बुत के ऊपर कि ये बातिल खत्म हो गया। तो हो सकता है, आपको पता है ना, बाज दफा मक्की सूरत के अंदर भी, ये मक्की सूरत है ना, इसमें कुरान का जो नजूल है उसकी तरतीब अलग है, और जिस तरह से ये तरकीब तौकीफी है वो अलग है, जैसे इसमें लिख रखा गया है हर जगह कि इस आयत को इसमें इसमें ये रखी जाए, तो वो अलग है। तो उस लिहाज से आप देखा जाए तो हो सकता है कि बाद में नाजिल हुई हो और इसको इस सूरत में रखा गया हो। तो ये आयात मदनी है लेकिन मक्की सूरत के अंदर रखाई गई, और ये भी हो सकता है कि ये पहले ही नाजिल हुई, जब ये बाकी सारी सूरत नाजिल हो रही तभी ये नाजिल हुई और आपको उसी वक्त बता दिया गया, एक पेशीन गोई दे दी गई, एक खुशखबरी दे दी गई कि हक आ गया। अभी तो आया नहीं था, फिर क्यों कहा गया आ गया, मुस्तकबिल की बात को माजी में क्यों कहा गया? इसलिए कि जब भी कुरान मुस्तकबिल की बात को माजी के सीगे में कहता है, इसका मतलब ये बात यकीनी है, बातिल समझ लो मिट गया, जैसे हम कहते हैं ना बस समझ लें आपका काम हो गया, अभी हुआ तो है नहीं, समझ लें हो गया का मतलब क्या कि इतना यकीनी है कि हो गया, तो बातिल समझ लें हैं कि मिट गया और हक गालिब आ गया। तो हिजरत तो अभी करनी है, उसके बाद 8 सालों के बाद दोबारा दाखिल होना है, लेकिन उस वक्त ही कह दिया गया, क्योंकि जब इंसान ये दुआएं करता है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन, ऐसी दुआएं करता है तो अल्लाह ताला इसी तरह मदद फरमाता है। ये दुआ ही इतनी पावरफुल है, अल्लाह ताला बातिल को मिटा देगा। और आपको पता है इस तरह की दुआ मूसा और सॉरी मूसा कह रही हूँ, ईसा और यहीया अलैहि सलाम की भी ऐसी दुआ है ना, दुआ क्या है या स्टेटमेंट कह लें, या दुआ के ने वजालनी मुबारक अइनमा कुंतुम, ये कुरान में आता है। तो उन्होंने भी कहा कि हमें अल्लाह ने मुबारक बनाया है जहां पे भी हम कहीं जाएं, और एक तरह से इसमें दुआ भी है, तो बाबरकत बना दिया है। तो इब्ने अब्बास इससे यही दुआ किया करते थे ना, अल्लाहुमा जालनी मुबारकन अइनमा कुंतुम, जहां पे भी मैं जाऊं अल्लाह मेरी बरकतें ही हो, बरकतें ही हो, मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, मैं जहां जाऊं, चाहे लोगों से मिल रहा हूँ, किसी के साथ बैठ रहा हूँ, किसी के साथ चल रहा हूँ, किसी के काम कर रहा हूँ, किसी के साथ बात कर रहा हूँ, मामला कर रहा हूँ, पॉजिटिव असर ही मेरा हो, मेरे से अच्छी बात हो, तो बड़ी जबरदस्त ये बात है। तो इट्स सिमिलर, ठीक है, मैं चाहता कि आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अगर आप ये दुआ याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इब्ने अब्बास की भी दुआ याद कर लें, नूह अलैहिस्सलाम को भी इससे मिलती जुलती दुआ सिखाई गई थी ना, जब कश्ती में सवार हुए थे तो उन्होंने अल्लाह ताला कुरान पाक में उनको सिखाता है दुआ कि कुर रब्बी अंजिलनी मुंजलन मुबारक, क्योंकि कश्ती ने तो कहीं जाके रुकना था ना, तो अल्लाह ताला मेरा नजूल मुबारक करना। तो सिद्क में भी बरकत भी है, सलामती भी है, खैर भी है। और आप ये भी कैसे सकते हैं, अल्लाहुम्मा जालनी मुबारकन अइनमा कुंतु। ठीक है, दुआएं हमारा हथियार हैं, दुआएं हमारे लिए, हम तो बेबस हैं, दुआएं हमारे, दुआओं से ही तो हम चलने वाले हैं। हाँ, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वनुनज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम नाजिल करते हैं इस कुरान से जो शिफा है और रहमत है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ मोमिनों के लिए। पढ़ते होंगे और भी लोग पढ़ते होंगे कुरान पाक को, ताकि इससे कुछ ऐसी बातें निकालें जिससे लोगों को एतराज करके बताएं कि देखो देखो ये तो कुरान ऐसे कहता है, लेकिन उनको इससे शिफा नहीं मिलती ना रहमत मिलती है। ये सिर्फ ईमान जो लेकर आता है ना इसके ऊपर, जो इसको मान लेता है ये अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ता है, इसको सीखता है, इसको इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है, उसके लिए ये शिफा भी है और रहमत भी है। इसका मतलब है किस चीज से शिफा है, किन बीमारियों से शिफा है, क्या रूहानी बीमारियों से, क्या जिस्मानी बीमारियों से, किन बीमारियों से शिफा। यहां पर एक ओपन बात कही गई है, यानी हर तरह की बीमारियों के लिए ये शिफा का काम देता है। तो हम शिफा को अगर देखें तो कुरान पाक में और जगहों पे भी, सूरह यूनुस में भी इसको शिफा कहा गया, शिफा लिमा फिस सुदूर, शिफा है दिलों के लिए। मगर यहां पर तो एक कॉमन बात की गई। तो हम रूहानी बीमारियां जब देखते हैं तो जो ये एक, ये मैं आपको बताऊं, ये आजमाई भी चीज है कि जो जहनी बीमारियां ना, खासतौर पे एंजाइटी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एहसास महरूमी, गम और इसका छा जाना, और ये सब, ये जो है ना, ये कुरान से में इसकी क्योर है, समझ ले कुरान में इसकी थेरेपी है, कुरान इसकी थेरेपी है, ये समझ ले मेडिटेशन है, ये समझ ले। इसीलिए बाज रिवर्ट से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम वी फील पीस ऑफ हार्ट, इस इस्लाम में आने के बाद एक सकून मिल जाता है, एक चैन मिल जाता है, एंग्जाइटियां दूर होती हैं। और बहुत से लोग हैं, बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि जब वो कुरान से जुड़े हैं ना, तो वो उनका जो डिप्रेशन का मर्ज था वो खत्म हो गया, वो जो गोलियां थी वो उनकी छूट गई। अब लोगों को कहते हैं ना कि आपको डिप्रेशन है, ये है, तो आप कुरान की तरफ आए, तो वो समझते हैं कि पता नहीं ऐसे ही कहने लगे हैं, ऐसा नहीं है, ये वाकई है। इसी तरह ऐसी बीमारियां जो अखलाकी बीमारियां, उनके लिए भी ये शिफा है। जैसे ना हसद है, कीना है, अदावत है, बोझ है, ये सारी चीजों, रियाकारी, निफाक, शिर्क, ये इनका भी इलाज इस कुरान के अंदर है। जाहिर है इंसान जब पढ़ेगा इसके अंदर, उसको ये नहीं है कि इसको गोल गोल के पीते रहे तो सिर्फ वो इलाज है। मैं वैसे बता रही हूँ कि जब पढ़ता है ना इंसान तो उसको फिर समझ आता है, कहते क्या मैं हसद में लगा हूँ, क्यों मैं कीने रख रहा हूँ, वो तो उसका यानी ये चीजें खत्म होने लगती हैं उसके अंदर से। तो मुतलकन कॉमन मीनिंग है शिफा का ना। तो इसी तरह जो और बीमारियां, माशर्ती बीमारियां, जैसे कि झूठ है, गीबत है, नहीं वो भी उसमें आ जाती हैं, समझ लें आप इखलाकी बीमारियों में आ गई, माशर्ती बीमारियों में जैसे कि फहाशी है, जुल्म है, माँ बाप की नाफरमानी, कतअ रहमी, ये वगैरह ना, ये भी कुरान के जरिए ये बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और जराइम है, मिलावट है, रिश्वत है, सूद है, जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जो कुरान से जुड़ा हुआ होगा, कुरान उसको तस्किया कर देता है, ये बीमारियां दूर कर देता है। और जहां तक ये शैतानी वसवास है, जिन्नात है, ऐसी अब ये मखलूक है, इसको आप देख नहीं सकते, इसका आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों का भी इलाज इस कुरान के अंदर है। तो ऐसी जो ताकतें हैं, शयातीन है, वो हमसे ज्यादा कुव्वत वाली हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये कुरान देकर ان کو زیر کرنے کا طریقہ بتا دیا. آپ کو پتا ہے آیت الکرسی کے اندر، پھر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کے اندر اس کا علاج ہے. میں نے آپ کو پورے خواب کے شر سے بچنے کا بھی علاج قرآن سے ہی بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم. اور اسی طرح اور حدیث میں بھی اسی طرح جادو سے شفا اس کے اندر ہے، معوذات جو ہیں اس میں ہیں، جادو سے بھی شفا ہے. پھر اسی طرح جو نظر بد ہے اس کے لیے بھی علاج اس کے اندر ہے، معوذتین میں ہے. تو یہ ساری آپ دیکھیں تو شفا کتنی، جنون مرگی وغیرہ کا کسی کے اوپر سایہ ہو جائے پھر بھی صورتیں یہی پڑھنا. سورہ فاتحہ کو تو الشافیہ کہا گیا ہے، اس کا نام الشافیہ، تو اس کے اندر بھی علاج ہے. ایون یہ جو ہماری جسمانی بیماریاں نا ان کا بھی علاج ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ کہیں گئے تو وہ ان بستی والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا، تو صحابہ ایک طرف ہو گئے. اب ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ بھاگ گیا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی دم وغیرہ کا پتہ ہے تو آ کے ہمارے سردار کو کر دیں، ان کو بچھو نے کاٹ لیا. تو ابو سعید خدری تھے تو انہوں نے وہ گئے تو انہوں نے دم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا. انہوں نے کہا کتنا معاوضہ؟ انہوں نے کہا 30 بکریوں کا انہوں نے وعدہ کر دیا. تو ابو سعید خدری نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے 30 بکریاں بھی انہوں نے کہا آپ لیں، اور ساتھ انہوں نے مہمان نوازی بھی کی. لیکن انہوں نے آ کے پہلے کہا ہم اپنے نبی سے پوچھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم لے سکتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے، یہ کس نے تمہیں بتایا؟ وہ کہنے لگے یہ قرآن ہے اور قرآن میں شفا ہے تو ہم نے اس لیے ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، یعنی بکریاں جو تمہیں ملی. تو یہ بالکل جائز، ایسے پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا تریاق قرار دیا نا، کہ زہر تھا نا. اسی طرح بہت ساری اور بیماریاں بھی ان کے زہریلے ہی اثرات ہوتے ہیں، کہیں کووڈ ہے، کہیں اور کینسر، کوئی ایسی، یہ زہر ہی ہیں. تو دنیا میں ان کی دوائیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوا نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے دوا میں بھی شفا ڈالنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی شفا رکھی ہے، لیکن قرآن ساری دواؤں سے ٹاپ پہ ہے، سب سے اوپر قرآن ہے. لہذا اگر آپ دوا کا انتظام نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس دوا نہیں ہے، یا دوا ہے بھی تب بھی قرآن وہ کام کرتا ہے جو کوئی پین کلر کام کرتی ہے، وہی کام قرآن کرے گا اس سے بہتر. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں بتائی ہیں درد کی، تکلیف کی، وہ کتنی زبردست ہے. پھر زہر کا تریاق یہ سورہ فاتحہ ہو گئی. تو آخری صورتیں آپ سب جانکنی کہ جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کا علاج بھی اس میں ہے نا، کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ تھے، بے چین تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر معوذتین کس کو کہتے ہیں، فلق اور ناس کو پڑھ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پہ پھونکتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں کو پھیرتی تھی برکت کے لیے، آپ کے ہاتھوں کو پورے آپ کے جسم کے اوپر پھیرتی تھی. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ان دو صورتوں کے اندر شفا ہے، یہاں پہ کہا گیا قرآن میں شفا ہے. تو جیسے ابو سعید خدری جو تھے انہوں نے سورہ فاتح کو 7 دفعہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا تھا کہ 7 دفعہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے جا کے یہ کیا، انہوں نے آ کے بتایا کہ پورا قرآن ہی شفا ہے. تو بعض لوگوں نے شفا والی آیتیں سلیکٹ کی ہیں اور وہ شفا کے لیے وہ پڑھتے ہیں، بعض جادو کے لیے وہ جو سحر والی آیتیں ہیں وہ نکال کے وہ پڑھتے ہیں. تو چاہے یہ سنت میں نہیں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی بتایا وہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ یہاں پہ کہا گیا کہ قرآن میں ما ہوا شفا، ان پورا پورا قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی آیات کو لے کر وہ ان سے دم کر سکتے ہیں. ایک تو حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا نا، یہ جو میں نے ابو سعید خدری کی بتائی ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے نا تو لوگ آپ کے پاس دم کے لیے آتے تھے، دم کروانے کے لیے، تو तो आप सरसलम उनको आपने फरमाया कि अपने अपने दम, जो बाकी लोग भी दम करते थे, तो आप सरसलम ने उनको बताया कि आप लोग अपने दम मेरे पास लेकर आओ, पेश करो मेरे सामने। उन्होंने पूछा कि भाई हम करें कि नहीं करें आप, तो उन्होंने जब पेश किए तो अगर उसमें कोई शिरकिया बात होती तो आप कहते कि ये ना करो, ये छोड़ दो। एक एक का दम सुनते थे, फिर आप सल्लल्लाहु उसके बारे में फैसला देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि किसी भी दम में कोई हर्ज नहीं है, मगर यह है कि उसमें शिर्क ना हो, ठीक है। लिहाजा कुरान की कोई आयात आप सिलेक्ट करके या किसी ने आपको बताई आप वो लेके, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने तौर पर इसको ये ना करेंगे ये कोई सुन्नत है या कोई हदीस है, लेकिन आप आपका दिल करता है आप 3 दफा पढ़ लें, आपका दिल करता है आप 7 दफा पढ़ लें, आपका दिल करता है आप, अनलेस कि हदीस के अंदर कोई स्पेसिफिक नंबर दिया गया हो तो वो तो आपने उतना ही फॉलो करना है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी चीज नहीं है, मसलन आजकल सूरह रहमान से भी इलाज किया जाता है, तो सूरह रहमान से कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप उसको 3 दफा कर लें, पढ़ लें, या 7 दफा पढ़ लें, या अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है तो हम ताक ऑड नंबर में ज्यादातर कोशिश करें, तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जायज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक, रुकिया के तौर पे, दम के तौर पे। अच्छा, अब इसमें मुफस्सिरीन ने बहस की है कि जैसे हम पढ़ के दम करते हैं, इस तरह क्या कागज पे लिख के गले में लटकाया जा सकता है? तो हमें सहाबा कराम से ये मिलता है, इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में, तफसीर कुर्तुबी में लिखा है सहाबा के वाकयात के, जिन बच्चों को तो समझ होती थी ना उनको सहाबा सिखा देते थे। अब जैसे माउजा तैन सिखा दिया, या सूरह फातिहा सिखा दी, या इस तरह से उनको तो सिखा देते थे, लेकिन जिनको कोई शऊर ही नहीं होता, छोटे 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 बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, तो उनके लिख के उनके गले में लटका देते थे। तो बाज उलमा तो बिल्कुल इससे मना करते हैं कि आपने बिल्कुल तावीज नहीं लटकाना, बिल्कुल उसको शिर्क करार देते हैं। बाज कहते हैं कि जिसमें कुरान लिखा है ना, वो कुरान तो शिर्क नहीं हो सकता ना, क्योंकि हदीस में आता है ना कि जो तावीज पहनता है तो अल्लाह ताला उसी के हवाले उसको कर देता है, तो उसी के हवाले यानी उसी उसी तावीज के हवाले कर देता है। तो अगर किसी को अल्लाह ताला कुरान के ही हवाले कर देता है, तो कुरान तो अल्लाह की सिफत है, तो कुरान के हवाले होना तो अच्छी बात है। तो इसलिए ऐसे आप वैसे तो खुद ही पढ़ें, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। इसी तरह पानी पे क्या पढ़ के फूंकना, ये क्या सही है? तो अगर तो इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाले की फूक बाबरकत है, वो तबर्रुक है, तो ये फूकेगा तो इसकी फूक से कुछ होना है, तो फिर ये सही नहीं है, ठीक है। बरकत की जात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बरकत हम ले सकते थे जब वो जिंदा थे, या उनकी कोई चीज आज भी है तो उससे बरकत ले सकते हैं, लेकिन आज तो ज्यादातर चीजें ऐसे ही लोगों ने बनाई हुई है फेक, वो उनकी चीज नहीं है, लेकिन अगर आज भी उनकी कोई चीज होती तो उससे बरकत दी जा सकती थी। जैसे उम्मे सलमा ने आपसे सलम का बाल रखा हुआ था तो उससे बरकत लेती थी, जब कोई बीमार होता था तो उसको ऊपर से पानी बहा के उसको पिला देती थी, लेकिन उसके अलावा किसी और जात से नहीं हम बरकत ले सकते। तो ये नहीं हमने सोचना कि इसकी फूक से ही असर होगा। हाँ, मगर आप खुद भी जैसे हमारे जैसे लोग, आम से लोग हैं, हमें तुम्हारी तो कोई ऐसी बरकत वाली जात या ऐसी कोई चीज नहीं है, तो हम जैसे कुरान पढ़कर फूक मार के पानी पे, और किसी बीमार को पिलाना हो, किसी बच्चे को पिलाना हो किसी को, तो ऐसा कर सकते हैं। सलफ सालेहीन से ऐसा मिलता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे भी फूक के तो इस तरह करते थे, तो ये शिफा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कहीं से भी कुरान पढ़ सकते हैं, तो इवन ये जो सूरह इसरा है ये भी, इसको ऐसे शिफा पास लोग इसको बताते हैं कि वो बच्चे जो बोल नहीं पा रहे होते या कुन जहन होते हैं, तो इस सूरत को पानी पे पढ़ के फूक के और फिर उन बच्चों को पिलाया जाए, या किसी के मसले मसाइल हैं बहुत ज्यादा तो इस सूरत को रोजाना पढ़ा जाए तो अच्छी बात है। कोई लोग 21 दिन कह देते हैं, 21 भी एक ऐसे बनाया हुआ है, आप 21 पढ़ें, 11 पढ़ें, 20 पढ़ें, मैं बेहतर यह है कि आप ऑड नंबर में पढ़ें, अल्लाह ताला को ऑड नंबर पसंद है, वो खुद ताक है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ताक अदद पसंद भी है, तो हम कोई ऑड नंबर में कोई 21 दिन कहता है, तो फिर चलो अगर हम ऐसे पढ़ के और को, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इस सूरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुश्किलों में आसानी के लिए, और इस तरह से भी शिफा है कि बच्चे की जुबान नहीं अगर चल रही तो उसके लिए पढ़ के फूंक के उसको दिया जाए। और ये रहमत है, रहमत यानी रहमत का मतलब है लपेट लेना, तो कोई अल्लाह ताला का कुरान लपेट लेता उसको जो इससे जुड़ता है ना, ये उसके लिए रहमत बन जाता है। और रहमत किसको नहीं चाहिए, इसी वजह से हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी और रहमा रखा, ये रहमत है। तो रहमत इस दुनिया की जिंदगी में भी इंसान को चाहिए और आखिरत में भी, तो अल्लाह की रहमत से ही इंसान जन्नत में दाखिल हो सकता है, अल्लाह की रहमत के बगैर तो नहीं हो सकता। तो इसकी रहमतें, इसकी बरकतें इस जिंदगी में भी इंसान देखने लगता है। यकीन करें ये बेस्ट फ्रेंड है, हर फ्रेंड छोड़ के चला जाता है लेकिन कुरान वो फ्रेंड है। तो किसी ने कहा था ना कि मैंने बड़े फ्रेंड्स तलाश किए, दोस्त तलाश किए जो वफादार दोस्त हो, मुझे कोई वफादार दोस्त नहीं मिला, क्योंकि हर दोस्त छोड़ जाने वाला है। मतलब इंसान मर जाएगा तो दोस्त तो छोड़ के चले जाएंगे ना, सिवाय कुरान के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त है, क्योंकि वो आपके साथ कब्र में भी होगा, वो हशर में भी होगा। इस तरह का फ्रेंड आपको कहीं मिल सकता है भला? तो कुरान के साथ जुड़ेंगे तो रहमत ही रहमत है। पता नहीं क्यों लोग बेचारे इससे भागते हैं, उनको क्या लगता है कि पता नहीं क्या हो जाना है अगर हम इस कुरान के साथ जुड़ गए तो, अगर हमने इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो। अल्लाह अकबर। तो फरमाया वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, जालिमों को ये खसारे के अलावा किसी चीज में इजाफा नहीं करता, जालिमों के लिए खसारा है। युदिल्लु भी कसीरा वो यहदी भी कसीरा, इसी कुरान के साथ लोग फिर गुमराह भी होते हैं, इसी के साथ लोग फिर हदायत भी पा जाते हैं, तो उनका खसारा ही बढ़ता है। क्योंकि जालिम वो है जो कि इसके ऊपर ईमान नहीं रखता है, जिसने इसको पिसे पुश डाल रखा है, जो इसको कोई हिदायत की किताब ही नहीं समझता, जिसने इसके साथ अपना ताल्लुक ही नहीं रखा हुआ। देखा आप कितना ज्यादा जोर है यहाँ पे कुरान का, ये कुरान के साथ जुड़ने का, इसको समझ, जुड़ने से मतलब अब ये ना सोचना कि पता नहीं जुड़ने का क्या मतलब, जुड़ना जुड़ना बोलती जा रही। जुड़ने का मतलब ये है कि यानी इंसान इस कुरान को पढ़े, सीखे, समझे, इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। यानी आपके पास कुरान, आप किसी भी चीज फॉर्म में है ना, यानी आप चाहे तिलावत करनी है, चाहे आप इसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं, चाहे आप इसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, चाहे आप इसको हिफ्ज कर रहे हैं, चाहे अपनी तजवीद सही कर रहे हैं, ये आपका ताल्लुक है ना कुरान के साथ, ये जुड़ना है, अपनी जिंदगी में इसको शामिल करना। कि इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे इसको रखे कि बार बार हम पलटें कुरान की तरफ, बार बार हम दिन में कई दफा पलटें। अभी देखें आप सुबह के वक्त कुरान का हो गया, दिन में, ये नहीं कि सिर्फ रमजानों में ही हमारा कुरान होता है उसके बाद तो सारा वक्त हम कुरान को बंद करके ही रखें, ये नहीं होना चाहिए। ताल्लुक मजबूत हो कि ये लिविंग किताब है, लिविंग। ये वो नहीं है जैसे आप दूसरी किताबें उठा उठा के आपकी शेल्फ में बहुत सारी बुक्स होंगी, ये वो नहीं है, ये एक बुक नहीं है, ये एक लिविंग चीज है। इसको आप देखेंगे अपनी कब्र में भी, इसको देखेंगे कि इट विल बी इन फॉर्म ऑफ समथिंग, जो अब अल्लाह वाला वहां पे कैसा होगा, लेकिन एक खूबसूरत खूबसूरत शक्ल में हो आएगा कब्र में, कयामत के दिन भी एक खूबसूरत शक्ल के अंदर खड़ा होगा, बोलेगा भी। तो ये कौन सी किताब है जो बोलती है, ये लिविंग चीज है, ये मोजा है, ये जिंदगी को बदल देने वाला है, इसका असर होता है, इसकी असरात है, इसीलिए तो जिंदगियां बदल जाती है ना, असरात हैं, और ये सिर्फ कुरान कर सकता है और कोई नहीं कलाम कर सकता। तो इसके असरात कैसे हैं कि बीमारियों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, फिर आप देखेंगे रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, फिर आप अपना ये जो दिल की अखलाकी बीमारियां, माशर्ती बुराइयां हैं, इन सब के अंदर कैसे ये रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब कोई माशरा अगर कुरान के ऊपर आ जाए तो वो माशरा कैसा खूबसूरत माशरा होगा। आज हमने कुरान को ही तो छोड़ा है, तो हमारी हालत देखिए क्या हो गई है। जो इसको छोड़ता है ना, तो फिर उसका खसारा ही बढ़ेगा, यानी दुनिया का भी खसारा है। देखिए कितनी, जिसको अल्लाह ने शिफा और रहमत बनाया, जिसकी जिंदगी से शिफा भी निकल गई, रहमत भी निकल गई, उसके पास रह क्या गया, खसारा, नुकसान। और आखिरत में तो इतना बड़ा नुकसान होगा, इसलिए क्योंकि जिसने इसको छोड़ा हुआ होगा देख लें अभी अंधा उठेगा, और दूसरी ये बात है ये कुरान वहां पे खड़ा हो के उसके खिलाफ गवाही देगा कि या अल्लाह इसने मुझे पसे पुश डाल रखा था, इसने मुझे छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, सूरह फुरकान में आपने पढ़ा होगा, खुद गवाही देंगे कि या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर तो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल रखना। आप देखिए कुरान से हमने कितनी प्यारी ये दुआ भी पढ़ी है, हमें कहाँ आनी थी। फिर भी लोग कहते हैं ना हमें सब कुछ आता है, इतनी प्यारी हमने दुआ पढ़ ली, इतनी बरकतें हैं इसकी। अब देखें अब हम तहज्जुद के बारे में हमने पढ़ा, अब हमारे दिल में शौक आया हमने तहज्जुद हम भी पढ़ लें। ये कुरान ऐसी चीज है ना आपसे आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों को ना निकालता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, मिरकल है ना ये, इतनी आपकी जिंदगी ऐसी बदल देता है आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन की पता ही नहीं चलेगा आप कब ट्रांसफॉर्म हो गए, आपकी आपका माइंड कैसे चेंज हो गया। ऐसे नहीं कि डंडा लेके खड़ा हो जाता है और आपको एक दिन में कि जी आप करें, तो बाज लोग डर जाते हैं पता नहीं मैं चेंज होके क्या हो जाऊंगी, वो तो नहीं मैं नहीं चेंज करना चाहती अपनी जिंदगी, वो चाहते नाफरमानियों में ही जिंदगी गुजारे तो वो इसलिए कुरान की तरफ नहीं आना चाहते। ये आपको पता ही नहीं कि कितनी खूबसूरती से बदलता है, आपको जबरदस्ती नहीं बदलता, आप खुद बदलते हैं, आपका दिल करता है बदलने का, आप खुद कैसे चेंज के आप ढलते चले जाते हैं, जैसे आपको ढाल रहा है ना इस तरह, जैसे आप वो कुम्हार होता है किसी बर्तन को कैसे वो शेप देता है, इस तरह आपको शेप आप कर देता है। अच्छा एक बात मैं ये इस दुआ के हवाले से आपको बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ मांगी थी ना वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अल्लाह ताला ने देखिए इतने ऐसी ऐसा सुल्तान दे दिया। इस दुआ की बरकत से मुफसिरीन कहते हैं कि जब मदीना पहुंचे तो अंसार अपने दिल अपने घर अपना माल सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया आपके लिए, देखिए ना कुव्वत वहां कुव्वत को मददगार बना दिया ना, तो आप किसी जॉब में हैं आप किसी जगह पे हैं आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला किसी कुव्वत को मेरा मददगार बना दे, तो आप ये दुआ पढ़ें अल्लाह ताला कोई मददगार खड़ा कर दे। आप किसी मीटिंग में जाने लगे हैं वो जॉब्स करते हैं मीटिंग में जाते हैं दिल घबरा रहा है, आप ये दुआ करें तो हर सिचुएशन में, मेरा मतलब है कि आपकी ये दुआ बड़ी आपको कारगर साबित होगी। और ये देखें कुरान ही हमें सिखाता है, सुभान अल्लाह।